कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग्म, अपनी बात अपनी भाषा में।
किसी के लिए मौन, किसी के लिए द्रुत गति से वक्त गुजरा। कुछ शब्द हवाओं ने भेजा, कुछ शब्द घटाओं ने, कुछ मिट्टी की सौंधी गंध ने, कुछ इंद्रधनुषी छटाओं ने, कुछ फूलों की भीनी खुशबू ने, कुछ चिड़ियों के कलरों ने, कुछ क्षितिज ने, कुछ पहाड़ों ने, कुछ आँखों की रुमानियत ने, कुछ जीवन के गहरे अनुभवों ने। उन शब्दों को तराशने वाले जौहरियों को आज फिर मैं रश्मि प्रभा लेकर आई हूँ हिंद युग्म के साहित्यिक मंच पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, बात से बात निकले यादों के झरोखों से, कुछ चेहरे तुम लाओ कुछ हम लाएं, कोई तो पहचान बने। बड़ी अस्त व्यस्त सी है जिंदगी, बड़ी अस्त व्यस्त सी है जिंदगी, जज्बातों का तूफान है, आओ हम बांट लें। तो स्वागत कीजिए मिलकर श्रीमती सरस्वती प्रसाद जी का। आइए सरस्वती जी।
हिंद युग्म के सम्मानजनक मंच पर हमारी कलम का स्वागत, कलम की स्तुति है। और मैं सरस्वती प्रसाद अभिभूत हूँ इस सम्मान के निकट। शुक्रिया करती हूँ आप सभी का और अपनी एक भेंट आपको देती हूँ, मन का रथ। मन का रथ जब निकला आए बुद्धि विवेक, मन का रथ जब निकला आए बुद्धि विवेक, रोका टोका समझाया देसी खनेक। लेकिन मन ने एक नहीं मानी, रथ लेकर निकल पड़ा, झटक दिया बातों को, जिद पर रहा अड़ा। सोचा मैं मतवाला पंछी नील गगन का, कौन भला रोकेगा झोंका मस्त पवन का। जब चाहूँ मुट्ठी में भर लूँ चांद सितारे, मौजों से कहना होगा कि मुझे पुकारे। आंधी से तूफान से हाथ मिलाना होगा, अंगारों पर चलकर मुझे दिखाना होगा। लोग तभी जानेंगे हस्ती क्या होती है, अंगूरी प्याले की मस्ती क्या होती है। मन की सोच चली निर्भय हो आगे आगे, अलग हो गए वो अपने जो रास्ते थामे। यह थी उनकी लाचारी, कुछ कर न सके वो, चाहा फिर भी नहीं वेग को पकड़ सके वो। समय हंसा रे मूर्ख, अब तू पछताएगा, टूटा पंख लिए एक दिन वापस आएगा। सत्य नहीं जीवन का नम्मे चांद का आना, सच्चाई है धीरे धीरे तम का छाना। समझ जिसे मधुरस मानव प्याला पीता है, वह केवल सपनों में ही जीता मरता है। अनावरण जब हुआ सत्य का मन घबराया, रास हाथ से छूट गई, कुछ समझ न आया। यायावर पछताया, रोया फूट फूट कर, रथ के पहिए अलग हो गए टूट टूट कर। रही से शक्ति पास ही खड़ी बुद्धि सहम कर, और विवेक कुलाया मन के गले लिपट कर। लिए मलिन मुख नीरवता आ गई वहाँ पर, लहू लहान मन को समझाया अंग लगा कर। धीरे से बोली अब मिलजुल साथ ही रहना, फिर होगा रथ तीनों मिलकर आगे बढ़ना। कोई गलत कदम अक्सर पथ से भटकाता है, मनमानी करने का फल फिर सामने आता है। धन्यवाद।
आंधी से तूफान से हाथ मिलाना होगा, अंगारों पर चलकर मुझे दिखाना होगा। लोग तभी जानेंगे हस्ती क्या होती है, अंगूरी प्याले की मस्ती क्या होती है। वाह, क्या बात कही है सरस्वती जी ने। कवि दिनकर ने भी कहा था, यौवन के उच्छल प्रवाह को देख मौन मन मारे, सहमी हुई बुद्धि रहती है निश्चल नदी किनारे। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं श्रीमती स्वप्न मंजूषा शैल जी को। उनकी रचना है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, आज तक प्रश्न है पर समाधान कहाँ है? जनक की बेटी अवध की रानी सीता। आइए मंजूषा शैल जी।
मेरा नाम स्वप्न मंजूषा शैल है। सबसे पहले मैं हिंदी युग्म का धन्यवाद करना चाहती हूँ यह मंच प्रदान करने के लिए, और रश्मि जी का के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस कवि गोष्ठी को संचालित करने के लिए। आज मैं सुनाने जा रही हूँ मेरी कविता जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम। त्याग दिया वैदेही को और जंगल में भिजवाया, त्याग दिया वैदेही को और जंगल में भिजवाया, एक अधम धोबी के कही पर सीता को वन वन भटकाया। उस दुख की क्या सीमा होगी जो जानकी ने पाया, कितनी जल्दी भूल गए तुम उसने साथ निभाया। उसने साथ निभाया जब तुम कई कई को खटक रहे थे, दर दर ठोकर खाकर वन वन भटक रहे थे। अरे कौन रोकता उसको, कौन रोकता उसको, वह रह सकती थी राजभवन में। इनकार किया था उसने, तभी तो थी वह अशोक वन में। कैसे पुरुषोत्तम हो तुम, कैसे पुरुषोत्तम हो तुम, क्या साथ निभाया तुमने। जब निभाने की बारी आई तभी मुंह छुपाया तुमने। छोड़ना ही था सीता को तो खुद छोड़कर आते, छोड़ना ही था सीता को तो खुद छोड़कर आते, अपने मन की उलझन एक बार तो उसे बताते। तुम क्या जानो कितना विशाल हृदय है स्त्री जाति का, समझ जाती उलझन सीता अपने प्राण प्रिय पति का। चरणों से ही सही तुमने अहिल्या का स्पर्श किया था, चरणों से ही सही तुमने अहिल्या का स्पर्श किया था, पर स्त्री थी अहिल्या, क्या यह अन्याय नहीं था। तुम स्पर्श करो तो वह उद्धार कहलाता है, तुम स्पर्श करो तो वह उद्धार कहलाता है, कोई और स्पर्श करे तो स्पर्शित अग्नि परीक्षा पाता है। छल से सीता को छोड़कर पुरुष बने इतराते हो, छल से सीता को छोड़कर पुरुष बने इतराते हो, भगवान जाने कैसे तुम पुरुषोत्तम कहलाते हो। एक ही प्रार्थना है प्रभु, एक ही प्रार्थना है प्रभु, इस कलयुग में मत आना, गली गली में रावण है, मुश्किल है सीता को बचाना। वन उपवन भी नहीं मिलेंगे कहाँ छोड़कर आओगे, वन उपवन भी नहीं मिलेंगे कहाँ छोड़कर आओगे, क्योंकि तुम तो बस अहिल्याओं का उद्धार करोगे और सीताओं को पाषाण बनाओगे, अहिल्याओं का उद्धार करोगे सीताओं को पाषाण बनाओगे।
राम को जब वनवास मिला सीता ने साथ न छोड़ा, सीता चली अकेली वन में राम ने नाता तोड़ा, और कहलाए पुरुषोत्तम सीता को पाषाण बनाकर। अब हमारे बीच आ रहे हैं श्री अनिल जी, मासूम शायर। उनकी कविता है पिता। आइए अनिल जी।
हाथ कंधे पे मेरे एक रखता था वो, इन आँखों में सब देख सकता था वो, मैं तना था उसने ही जड़ कर दिया, मुझे कोई बरगद सा लगता था वो, रात खांसी से उसकी खफा हो गया, मेरी रातों में अक्सर जगता था वो, बस उम्मीदें कफन है मुझसे उसे, रात मुझको चादर से ढकता था वो, अब जवानी में सब सच लगने लगे, मेरे बचपन में जो जो कहता था वो, खुद पीने पड़े तब ये खारे लगे, फिर मेरे ये आंसू, फिर मेरे क्यों आंसू चखता था वो, राजा होते नहीं आज समझा हूँ मैं, मुझे बचपन में राजा सा लगता था वो, मेरी नींदों में कोई खलल ना पड़े, पहरेदारी में था तो जगता था वो, उसके हिस्से की खुशियाँ मुझको मिलें, सर खुदा के दरों पे रखता था वो, गम क्या है जो उसको कुछ ना दिया, उम्मीदें कहाँ मुझसे रखता था वो, आज सोचा इसे तो सिहरंसी हुई, आज सोचा इसे तो सिहरंसी हुई, उफ मेरे लिए मर सकता था वो। उन दिनों में उसको कुछ ना लिखा, उन दिनों में उसको कुछ ना लिखा, बिना चश्मे के जब पढ़ सकता था वो। उसके लिए कोई मुखड़ा हूँ मैं, और मेरे लिए कोई मक्ता था वो।
उसके हिस्से की खुशियां मुझको मिले, उसके हिस्से की खुशियां मुझको मिले, सर खुदा की दरों पर रखता था वो। वाह, बहुत ही अच्छी रचना, बहुत ही अच्छी, पिता की एक सशक्त छवि। अब हमारे बीच आ रही हैं श्रीमती दीपाली पंत तिवारी, इनकी कविता है शराबी का इंटरव्यू। आइए दीपाली जी।
हाथ जोड़कर सबको करती हूँ मैं प्रणाम, दीपाली पंत तिवारी दिशा है मेरा नाम। सम्मेलन में उपस्थित सभी कवियों को मेरा प्रणाम, ये मेरा प्रथम प्रयास है, कृपया उत्साहवर्धन कीजिएगा। किसी भी तरह का नशा मुझे हमेशा से ही नापसंद है। आजकल हमारा युवा वर्ग सबसे अधिक नशे का शिकार हो रहा है, कोई गुटखे का आदी है तो कोई शराब का, और शराब वो तो आजकल कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जाती है। एक दिन चिंतन मनन करते हुए मेरे मन में कई प्रश्न उठे, और उन्हीं प्रश्नों को खोजते हुए मैंने एक कविता लिख डाली, जो कि एक व्यंग है। इस कविता का शीर्षक है शराबी का इंटरव्यू। हमने अक्सर देखा है हर कोई शराबियों को धिक्कारता है, हमने अक्सर देखा है हर कोई शराबियों को धिक्कारता है, न जाने कैसे कैसे नामों से पुकारता है। मैंने सोचा क्यों ना इस बात पर गौर किया जाए, मैंने सोचा क्यों ना इस बात पर गौर किया जाए, आखिर सच्चाई क्या है तह में जाया जाए। कुछ तो बात है जो ये पीते हैं, कुछ तो बात है जो ये पीते हैं, यूं ही नहीं लोग मर मर के जीते हैं। फिर क्या था, हम इसी उधेड़ बुन में लग गए, इसी चक्कर में न जाने कितने ही दिन गुजर गए। फिर क्या था, हम इसी उधेड़ बुन में लग गए, इसी चक्कर में न जाने कितने ही दिन गुजर गए। जब कोई हाथ नहीं आया तो हमारी बीवी ने हमें सुझाया, जब कुछ हाथ नहीं आया तो हमारी बीवी ने हमें सुझाया, बोली अजी क्यों चक्कर में पड़ते हो, डायरेक्ट उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते हो। बोली अजी क्यों चक्कर में पड़ते हो, डायरेक्ट उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते हो। मैंने कहा वैसे अकल तो तुझमें कम है, मैंने कहा वैसे अकल तो तुझमें कम है, फिर भी तेरी इस बात में दम है। हमने तुरंत कागज कलम उठाया और घर से निकल पड़े, बिल्कुल खोजी कुत्ते की तरह सूंघते हुए चले। अभी कुछ ही दूर चले थे कि हमारी सांसें थम गईं, अभी कुछ ही दूर चले थे कि हमारी सांसें थम गईं, वहीं सामने नाली में गिरे हुए आदमी पर जम गईं। अभी कुछ ही दूर चले थे कि हमारी सांसें थम गईं, वहीं सामने नाली में गिरे आदमी पर जम गईं। हम डरते डरते उसके करीब गए, बोले मियाँ जिंदा हो या मर गए। हम डरते डरते उसके करीब गए, बोले मियाँ जिंदा हो या मर गए। उसने हमें मदभरी निगाहों से निहारा और बोला हाथ तो दो जल्दी से मतलब की बात कहो, और बोला हाथ तो दो जल्दी से मतलब की बात कहो। मैं बोला जी वो आपका इंटरव्यू चाहिए, पीते हो क्यों शराब इस बात का जवाब चाहिए। वो हमारे करीब आया और गुर्राया, भाई साहब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भाई साहब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम्हें क्या पता हम कितने सख्त हैं, तुम्हें क्या पता कि हम कितने सख्त हैं, सच पूछो तो हम ही हैं जो सच्चे देशभक्त हैं। पीते हैं हम शराब तो कितनों के धंधे चलते हैं, इसी कारण ही तो लोग हमसे जलते हैं। पीते हैं हम शराब तो कितनों के धंधे चलते हैं, इसी कारण ही तो लोग हमसे जलते हैं। हम सब एक हैं नारा हमने ही सच किया है, हम सब एक हैं नारा हमने ही सच किया है, अपनी बीवी और दूसरे की बीवी में कभी फर्क नहीं किया है। गर हम न पीते शराब तो डॉक्टर का क्या होता, शराब के ठेकों पर तो ताला पड़ा होता। गर हम न पीते शराब तो डॉक्टर का क्या होता, शराब के ठेकों पर तो ताला पड़ा होता। और साहूकार, साहूकार बेचारा क्या खाता, साहूकार बेचारा क्या खाता, कौन उसके पास अपना सामान गिरवी रखवाता। राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी है, राजनीति में भी हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि हमें शराब पीकर वोट देने की बीमारी है। हम तो भरी जवानी में ही मर जाते हैं, इस तरह जनसंख्या कम करने में भी हाथ बटाते हैं। भाई अब एक किस्सा हो तो बताऊं, दो चार बोतल पिलाओ तो आगे की सुनाऊं। मैंने कहा ठीक है अभी चलते हैं। पहले लोगों को कुछ संदेश दे देते हैं। वो बोला मेरा बस इतना ही कहना है, शराब तो हमारा गहना है। जितनी ज़्यादा पियोगे उतनी जल्दी मरोगे। लोग मरने के बाद करते हैं, तुम पहले ही सड़ोगे। धन्यवाद।
बेटा नशा करता है, इस बात से बड़े अनजान होते थे। अब तो पिता मुस्कुराकर जाम बना देते हैं, बेटे को कौन कहे, बेटी को थमा देते हैं। नशे में झूमना आज पतिव्रता होने की निशानी है, रिश्तों की बुनियाद ये बात अब पुरानी है। अब हमारे बीच हैं श्रीमती किरण सिंधु जी, इनकी रचना है रेमन। आइए किरण सिंधु जी।
हार्दिक अभिवादन। मैं किरण सिंधु पहले भी आपसे इसी मंच पर मिल चुके हूँ। जो दिखाई देता है उसकी गतिविधियां तो समझ में आती है, पर जो उद्देश्य है उसकी व्याख्या कैसे करें। मेरी आज की कविता का शीर्षक है रे मन, जिसमें मैंने मन को समझने का प्रयास किया है। आइए आप ही क्या साथ हैं। रेमन इतना चंचल क्यों है। समय का पंछी पंख पसारे हरदम आगे उड़ता जाए, लेकिन तू तो वर्षों पीछे मुझको अपने संग में जाए। यादों में उलझा भटका कर विस्तृत कर वही छोड़ा है। रेमन इतना व्याकुल क्यों है। तू तो सुख सुख का है वाहक, फिर दुख तुझ पर हारी कैसे। अमन ने बिखरी के लोगों को ढक लेते हैं बादल जैसे। हम तो तुझ पर ही आश्रित हैं सांसों पर जीवन हो जैसे। रेमन ऐसे घायल क्यों है। लगता है तू थक गया है अंतर्द्वंद से लड़ते। फिर भी तुझको जीना होगा सौ सौ मौके मरते। जीवन बस वही रुक जाता जिस क्षण तुम हो उससे बिछड़ते। रेमन इतना चंचल क्यों है, रेमन इतना व्याकुल क्यों है, रेमन इतना घायल क्यों है। धन्यवाद।
मन गुनता है, मन उड़ान भरता है, जाने कब कोई ठेस उसे अनमना कर जाता है। तब प्रश्न उठता है, रे मन तू अब क्या करेगा। अब हमारे बीच हैं श्री ललित मोहन त्रिवेदी जी, लेखन के बीच कच्ची उम्र में ही पड़े, आज उसकी घनी छाया में आइए हम भी चलें। आइए ललित मोहन जी।
आदरणीय रश्मि जी, आयोजकगण, श्रोतागण, सभी को ललित मोहन त्रिवेदी का हार्दिक अभिवादन और धन्यवाद। मेरा नाम ललित मोहन त्रिवेदी, निवास ग्वालियर मध्य प्रदेश, फिजिक्स से MSc हूँ। वर्तमान में कार्यालय महालेखाकार में वरिष्ठ लेखाकार हूँ। गीत, गज़ल, कहानी, आलेख लगभग हर विधा में लिखा है। कई गीत नाट्यों को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित और मंचित भी किया गया है। आज लगभग सभी रचनाएं प्रसारित और प्रकाशित हैं। मेरी कविताएं भावनाओं के साथ साथ कुछ विचार भी लेकर चलती हैं। आज जो गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसका मूल भाव है कि इस घनघोर आपाधापी के युग में, महत्वाकांक्षा की संधि दौड़ में हम जीवन ग्रस से ही वंचित होते जा रहे हैं। महत्वाकांक्षा जीवन के लिए होती है, लेकिन जब यही जीवन बन जाए तो जीने का रस ही समाप्त हो जाता है। यह गीत आपको, गीत और गजल दोनों का ही आनंद देगा, क्योंकि इसके हर छंद में मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है खूब पता था। तो लीजिए, प्रस्तुत है गीत। खूब पता था वो सागर है, खारा पानी है। हम जानते तो हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते कि खूब पता था वो सागर है, खारा पानी है, और फिर भी प्यास बुझाने पहुंचे, ये हैरानी है। प्रथम बंद है कि बहुत दूर तक सन्नाटों ने राह नहीं छोड़ी, बहुत दूर तक सन्नाटों ने राह नहीं छोड़ी, लेकिन हमने मीठे सुर की चाह नहीं छोड़ी। उधर नियत की और इधर अपनी मनमानी है, खूब पता था वो सागर है, खारा पानी है। दूसरा बंद देखिए कि जीवन भर अपनी शर्तों पर जिसको जीना है, जीवन भर अपनी शर्तों पर जिसको जीना है, और मीरा या सुकरात हलाहल उसको पीना है, और सर कटवा कर जीने की हठ हमने ठानी है, फिर भी प्यास बुझाने पहुंचे, ये हैरानी है। देखिए कि हमारे जीवन में संगीत क्यों नहीं उतर पाता है, क्या कमी रह जाती है कि बहुत कसे तारों को थोड़ा ढीला होना था, बहुत कसे तारों को थोड़ा ढीला होना था, और ढीले तारों को थोड़ा ठसकीला होना था, और सुर के साथ हमेशा हमने की नादानी है, खूब पता था वो सागर है, खारा पानी है, और फिर भी प्यास बुझाने पहुंचे, ये हैरानी है। देखिए महत्वाकांक्षा किस तरह सर उठाती है, और हम जीवन को किस तरह जीते हैं कि आसमान को छू लेने की आस लगा ली है, आसमान को छू लेने की आस लगा ली है, और हमने बैठे ठाले अपनी प्यास बढ़ा ली है, और छाया को कद समझ लिया है, उस पर ज्ञानी है, छाया को कद समझ लिया है, उस पर ज्ञानी है, फिर भी प्यास बुझाने पहुंचे, ये हैरानी है। और देखिए जीवन किस तरह जिया जाना चाहिए कि अंजुली भर अनुराग मिला तो आंगन सजा लिया, अंजुली भर अनुराग मिला तो आंगन सजा लिया, और चुटकी भर वैराग मिला तो ओढ़ा बिछा लिया, और माया पूरी की पूरी तो हाथ ना आनी है, खूब पता था वो सागर है, खारा पानी है। और देखिए कि हम किस तरह अपने साथ भी ईमानदार नहीं हो पाते हैं, हम किस तरह अपने आप को धोखा देते हैं कि ना तो गोताखोर बने जल में गहरे उतरे, ना तो गोताखोर बने जल में गहरे उतरे, लेकिन सागर की बातें करने से नहीं डरे। अरे अपने साथ सही, लेकिन यह बेईमानी है, फिर भी प्यास बुझाने पहुंची, ये हैरानी है। और अंतिम बंद है, आपका विशेष ध्यान चाहूंगा कि दौड़ रहे हैं लोग, भला हम क्यों रह जाएं खड़े, दौड़ रहे हैं लोग, भला हम क्यों रह जाएं खड़े, और यही सोचकर जाने कितने अंधे दौड़ पड़े, यही सोचकर जाने कितने अंधे दौड़ पड़े, और फिर इसको विकास कहते हैं, अजब कहानी है, और फिर इसको विकास कहते हैं, अजब कहानी है। खूब पता था वो सागर है, खारा पानी है, और फिर भी प्यास बुझाने पहुंचे, ये हैरानी है। नमस्कार।
जीवन भर अपनी शर्तों पर जिसको जीना है, जहर वाकई उसी को पीना पड़ता है। बहुत ही अच्छी सशक्त रचना। अब हमारे समक्ष हैं श्री नीरज गोस्वामी जी, लोनावला स्थित भूषण स्टील में उच्च तकनीकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। 2 सालों से इन्होंने गजल लिखना शुरू किया और उन खूबसूरत गजलों के मध्य बात सचमुच निराली हो गई। सुनिए निराली बात नीरज जी से। आइए नीरज जी।
गजल का मतलब है बात सचमुच में निराली हो गई, झूठ जब बोला तो ताली हो गई, कि बात सचमुच में निराली हो गई, बात सचमुच में निराली हो गई, झूठ जब बोला तो ताली हो गई, झूठ जब बोला तो ताली हो गई। शेर देखें कि फेर ली जाती झुका कर थी कभी, फेर ली जाती झुका कर थी कभी, उस शर्म से आँख खाली हो गई, उस शर्म से आँख खाली हो गई, कि मिल गई उनको इजाजत जुल्म की, मिल गई उनको इजाजत जुल्म की, अपनी तो फरियाद गाली हो गई, अपनी तो फरियाद गाली हो गई, कि एक नदी बहती कभी थी जो यहाँ, एक नदी बहती कभी थी जो यहाँ, बस गया इंसान तो नाली हो गई, बस गया इंसान तो नाली हो गई। और इस शेर पर आपका तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये इसलिए ख़ास है कि इसमें एक शब्द प्रयोग में लाया गया है जो अमूमन तौर पर गज़लों में नहीं इस्तेमाल होता। ये असर हम पर हुआ इस दौर का, ये असर हम पर हुआ इस दौर का, भावना दिल की मवाली हो गई, भावना दिल की मवाली हो गई, कि डाल दी भूखे को जिसने रोटियां, डाल दी भूखे को जिसने रोटियां, वो समझ पूजा की थाली हो गई, वो समझ पूजा की थाली हो गई। और आखिर में कि हाथ में कातिल के नीरज फूल है, हाथ में कातिल के नीरज फूल है, बात अब घबराने वाली हो गई, बात अब घबराने वाली हो गई, झूठ जब बोला तो ताली हो गई।
भोजपुरी भाषा की मिठास ही कुछ अलग सी होती है, और जब मनोज भावुक जी हों तो इसकी मिठास और बढ़ जाती है। अब हम भोजपुरी रचना सुनेंगे मनोज भावुक जी से। स्वागत कीजिए मनोज जी का।
हिंद युग्म के श्रोताओं को मनोज भाव का प्रणाम। एक भोजपुरी गीत। बांझ हो गइल बा, बांझ हो गइल बा संवेदना के गांव, बांझ हो गइल बा संवेदना के गांव, नेह हो गइल बा बबूरवा के छाँव। अंतरा देखिए कि प्यार प्रीत के जमीन रेह हो गइल बा, प्यार प्रीत के जमीन रेह हो गइल बा, आत्मा मरल, आत्मा मरल मसीन देह हो गइल बा, लेत केहू नइखे, लेत केहू नइखे इंसानियत के नाम, बांझ हो गइल बा संवेदना के गांव। तक करे जे अगोरिया से चोर हो गइल बा, कर जे अगोरिया से चोर हो गइल बा, देश पर लुटे रवन, देश पर लुटे रवन के जोर हो गइल बा, कोरा में के लईका, कोरा में के लईका के जाई के ने पाँव, कोरा में के लईका के जाई के ने पाँव, बांझ हो गइल बा संवेदना के गांव, नेह हो गइल बा बबूरवा के छाँव। जाति पाति धर्म के उठेला लहरिया, जाति पाति धर्म के उठेला लहरिया, रोटी बिना लईका के ऐठे अतरिया, जाति पाति धर्म के उठेला लहरिया, रोटी बिना लईका के ऐठे अतरिया, कौवन के सभवा, कौवन के सभवा में होला काँव काँव, कौवन के सभवा में होला काँव काँव, बांझ हो गइल बा संवेदना के गांव, नेह हो गइल बा बबूरवा के छाँव। अंतिम मंत्रा कि टूकी टूकी गौआ हटूकी टूकी घरवा, टूकी टूकी गौआ हटूकी टूकी घरवा, घरवो में घरवा आओहू में दररवा, घरवो में घरवा आओहू में दररवा, भावुक जिनगिया, भावुक जिनगियाई लागी कौन ठाँव, भावुक जिनगियाई लागी कौन ठाँव, बांझ हो गइल बा संवेदना के गांव, नेह हो गइल बा बबूरवा के छाँव।
बांझ हो गई बा संवेदना, क्या बात है। अब आ रही हैं श्रीमती संगीता स्वरूप। इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगी कि ये अति संवेदनशील हैं, आसपास की घटनाओं से बहुत जल्द प्रभावित होती हैं और मन ही मन शब्दों का मंथन शुरू हो जाता है। उन्हीं शब्दों को लेकर ये आई हैं रचना का शीर्षक है चक्रव्यूह। आइए संगीता जी।
हिंद युग्म के इस कवि सम्मेलन के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संगीता स्वरूप दिल्ली से हूँ, कहीं कहीं गतिका के नाम से भी लिखती हूँ। मन में उमड़ते भावों को शब्द देने का प्रयास करती हूँ। हिंद युग्म और रश्मि जी की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आप सबके सम्मुख अपनी कविता पढ़ने का अवसर प्रदान किया। मेरी कविता है चक्रव्यूह। सागर के किनारे गीली रेत पर बैठ अक्सर मैंने सोचा है, सागर के किनारे गीली रेत पर बैठ अक्सर मैंने सोचा है कि शांत समुद्र की लहरें उच्छ्वास लेती हुई आती हैं और जाती हैं। कभी कभी उन्माद में मेरा तन मन भिगो जाती हैं, पर जब उठता है उद्वेग तब ज्वार भाटे का रूप ले चक्रव्यूह सा रचा जाती हैं। फिर इन लहरों का चक्रव्यूह तूफान लिए आता है, शांत होने से पहले न जाने कितनी आहुति ले जाता है। इंसान के मन में सोच की लहरें भी ऐसा ही चक्रव्यूह बनाती हैं। ये तूफानी लहरें न जाने कितने ख्वाबों की आहुति ले जाती हैं। चक्रव्यूह लहर का हो या हो मन का, धीरे धीरे भेद लिया जाता है और चक्रव्यूह भेदते ही हो जाता है शांत मन भी और समुद्र भी। शुक्रिया।
अब आ रही हैं श्रीमती शिखा वार्ष्णेय। दिल्ली की शिखा वार्ष्णेय की स्कूली शिक्षा यूं तो रानीखेत में हुई है, लेकिन इन्होंने स्नातक और मास्टर इन जर्नलिज्म की उपाधियां मॉस्को से प्राप्त की हैं। आप अपनी मातृभाषा जितनी अच्छी तरह जानती हैं, उतनी ही मजबूत पकड़ अंग्रेजी और रूसी भाषा पर भी है। इनका कहना है कि अन्य भाषाओं को जानना अपनी जगह है, गर्व है अपनी मातृभाषा हिंदी पर। अपने मनोभावों को कागज पर उतारना इन्हें अच्छा लगता है और इन्हें ही वे साहित्य मानती हैं। सुनिए उनकी रचना ओस और पानी। आइए शिखा जी।
नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा वार्ष्णेय लंदन में रहती हूँ और आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता में सक्रिय हूँ। मैं आभारी हूँ हिंदी युग्म और रश्मि प्रभा जी की जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने अपनी आवाज पहुंचा सकूं। आज जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ वो है ओस और प्राणी। कप कपाते पत्ते पर ठहरी एक बूंद ओस की, बचाए हुए किसी तरह खुद को कि तेज हवा उड़ा न दे, धूप कहीं सुखा न दे। उतरी है आकाश से, गिर न जाए धूल में, पर आखिर मिलना पड़ता है उसे उसी मिट्टी में, कंकड़ पत्थर के बीच ही, और वो लुप्त हो जाती है उसी धूल मिट्टी की धरा में। प्राणी भी तो जन्म लेता है लड़खड़ाते समाज की गोद में, और फिर बचाता फिरता है खुद को, अपने अस्तित्व को, अपनी पवित्रता को, इंसानियत को, इन संसारी थपेड़ों से, स्वार्थ की कड़ी धूप से। पर कब तक आखिर मिलना पड़ता है उसे भी इसी जर्जर व्यवस्था में। बन जाता है वो भी उनमें से ही एक जो बनाते हैं इस यथाकथित समाज को। जीना जो है उसे इसी परिवेश में, धन्यवाद।
अब आ रहे हैं श्री संत शर्मा जी। कविता लेखन और सेवा कार्यों में रुचि रखते हैं, शब्दों के माध्यम से ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सुनते हैं इनकी रचना क्षेत्रीयता। आइए संत शर्मा जी।
नमस्कार मित्रों, मैं संत शर्मा सर्वप्रथम हिंदी युग्म के इस मंच और इसके संचालन से जुड़े हर व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने आज के भाग दौड़ की जिंदगी में पॉडकास्ट कवि सम्मेलन की संभावनाएं तलाशी और उसे मूर्त रूप देने का यथासंभव प्रयास किया। यह उनके नेक प्रयासों का ही फल है कि यह कवि सम्मेलन मास दर मास सफलता के नए शिखर छूता जा रहा है। और कोई शक नहीं कि आने वाले समय में हिंदी युग्म पॉडकास्टिंग के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर सकने में सफल होगा। आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज अपने द्वारा पेश की जाने वाली कविता की विषय वस्तु की ओर अग्रसर होना चाहूंगा। मित्रों, क्षेत्रीयता आज के ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं में से एक है। इस तरह की सोच का दिन प्रतिदिन बलवती होता जाना हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गहरा आघात है। और समय रहते इस विषय में खुद और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मेरी कविता इसी विषय को केंद्र करके लिखी गई है, जिसका शीर्षक भी क्षेत्रीयता ही है। क्यों बिखरती जा रही है रोज कड़ियां एकता, विश्वास और आत्मीयता की? क्यों बिखरती जा रही है रोज कड़ियां एकता, विश्वास और आत्मीयता की? हैं कौन वो जो बो रहे हैं शूल राष्ट्र के सीने में क्षेत्रीयता की? जनतंत्र का यह गर्व भारत सदियों से बैरी रहा जिसका जमाना है, शान से कहती रही हम कुछ बात है हमने जो मिटता है नहीं ये आशियाना। क्या बात है हमने सिवाय एकता, विश्वास और आत्मीयता की? क्या बात है हमने सिवाय संस्कृति, सिद्धांत और राष्ट्रीयता की? है विश्वास अपना कि अतिथि देव होते हैं, है विश्वास अपना कि परहित धर्म होता है विश्वास अपना कि एकता में शक्ति होती है विश्वास अपना कि सर्वधर्म सम्मान ही सच्ची भक्ति होती है। यह विश्वास ही तो है जिसके सामने दिग्गजों के भी मनोबल टूट जाते हैं। यह शक्ति ही तो है जिसके सामने शत्रु हार जाते हैं, दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। फिर कौन है वो जो सदियों से संचित इस शक्ति को नष्ट करने पे तुले हैं? फिर कौन है वो जो भटक गए हैं, मंजिल की राह भूले हैं? क्या हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे उनकी गुस्ताखियों को, या बढ़ेंगे कुछ हाथ उनको रोकने को, समझाने को, राह दिखाने को? कहीं देर न हो जाए कि राही भटक जाएं, रास्ता दिखाना शेष न रहे। कहीं देर न हो जाए कि मंजिल खो जाए, फिर शायद इस राष्ट्र को बचाना शेष न रहे। धन्यवाद।
क्यों बिखरती जा रही है रोज कड़ियां एकता, विश्वास और आत्मीयता की? है कौन वो जो बो रहे हैं शूल राष्ट्र के सीने में क्षेत्रीयता के? बहुत सही प्रश्न उठाया है आपने, आज के परिप्रेक्ष्य में एक ज्वलंत प्रश्न। स्वागत कीजिए यायावर जी का। यूं इनका नाम अनुराग है, पर यायावर इनकी पहचान है। अपने परिचय के संदर्भ में ये बस यही कहते हैं कि मैं यायावर, पथ का गमन विश्राम मेरा। तो सुनते हैं यायावर जी को।
विधाता ने विधि गढ़ी नारी जस पूजन को, नौ माह शिशु को जो तन में छुपाए रे। विधाता ने विधि गढ़ी नारी जस पूजन को, नौ माह शिशु को जो तन में छुपाए रे। अखिया से निरढरे भूखे तन सोई परे, अखिया से निरढरे भूखे तन सोई परे। मंगल कलश दूध शिशु को पियावे रे, मंगल कलश दूध शिशु को पियावे रे। कैसे परमात्मा की आत्मा भी रोई रही, कैसे परमात्मा की आत्मा भी रोई रही, नारी ने हली पटी के आत्मा जियावे रे, नारी ने हली पटी के आत्मा जियावे रे। रूप की रूप हली में नारी रूप फेरती है, रूप की रूप हली में नारी रूप फेरती है। कहते हैं माई कभी बहीना कहाए रे, कहते हैं माई कभी बहीना कहाए रे। नर जब था कि हारे जीवन के राह तारे, नर जब था कि हारे जीवन के राह तारे। प्रेम का सहारा बनी नारी ही तो आई रे, प्रेम का सहारा बनी नारी ही तो आई रे। बोलते हैं नर जिमी नारी है कुलक्षिणी तो, बोलते हैं नर जिमी नारी है कुलक्षिणी तो, नारी नहीं जननी तो नर कहाँ आए रे,
नारी नहीं जननी तो नर कहाँ आए रे। विधाता ने विधि गढ़ी नारी जस पूजन को, नव माह शिशु को जो तन में छुपाए रे, विधाता ने विधि गढ़ी।
माँ ईश्वर का दूसरा नाम जो भी कहो कम लगता है, माँ की महिमा न जाए बखानी। अब सुनते हैं श्री श्यामल सुमन जी को, प्रशासनिक पदाधिकारी टाटा स्टील जमशेदपुर, अंतर्जात पत्रिका अनुभूति, साहित्य कुंज इत्यादि में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। बहुत सारी उपलब्धियों के साथ आज हमारे बीच हैं अपनी रचना अच्छा लगा के साथ। आइए सुमन जी।
आप सबको श्यामल सुमन का प्यार भरा नमस्कार। मैं श्यामल सुमन टाटा स्टील में कार्यरत, मिथिला में जन्म और संघर्ष मेरा परिचय, आपके महफिल में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हिंद युग्म के टीम और खास करके रश्मि प्रभा जी को, जिनके निरंतर प्रोत्साहन से मैं आज आपके महफिल में हूँ। तो लीजिए एक गजल पेश है, अच्छा लगा। हाल पूछा आपने तो पूछना अच्छा लगा, बह रही उल्टी हवा से जूझना अच्छा लगा। हाल पूछा आपने, दुख ही दुख जीवन का सच है लोग कहते हैं यही, दुख ही दुख जीवन का सच है लोग कहते हैं यही, दुख में भी सुख की झलक को ढूंढना अच्छा लगा। दुख में भी सुख की झलक को ढूंढना अच्छा लगा। है अधिक तन चूर थक कर खुशबू से तर कुछ बदन, है अधिक तन चूर थक कर खुशबू से तर कुछ बदन, इत्र से बेहतर पसीना सूंघना अच्छा लगा। इत्र से बेहतर पसीना सूंघना अच्छा लगा। रिश्ते टूटेंगे बनेंगे जिंदगी की राह में, रिश्ते टूटेंगे बनेंगे जिंदगी की राह में, साथ अपनों का मिला तो घूमना अच्छा लगा, साथ अपनों का मिला तो घूमना अच्छा लगा। कब हमारे चांदनी के बीच बदली आ गई, कब हमारे चांदनी के बीच बदली आ गई, कुछ पलों तक चांद का भी रूठना अच्छा लगा, कुछ पलों तक चांद का भी रूठना अच्छा लगा। घर की रौनक जो थी अब तक घर बसाने को चली, घर की रौनक जो थी अब तक घर बसाने को चली, जाते जाते उसके सर को चूमना अच्छा लगा, जाते जाते उसके सर को चूमना अच्छा लगा। दे गया संकेत पतझर आगमन ऋतुराज का, दे गया संकेत पतझर आगमन ऋतुराज का, तब भ्रमर के संग सुमन को झूमना अच्छा लगा, तब भ्रमर के संग सुमन को झूमना अच्छा लगा। हाल पूछा आपने तो पूछना अच्छा लगा, बह रही उल्टी हवा से जूझना अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
दुख ही दुख जीवन का सच है, दुख ही दुख जीवन का सच है, लोग कहते हैं यही, दुख में भी सुख की झलक को ढूंढना अच्छा लगता है। रिश्ते टूटेंगे बनेंगे जिंदगी की राह में, रिश्ते टूटेंगे बनेंगे जिंदगी की राह में, साथ अपनों का मिला तो घूमना अच्छा लगा। वाह, सच है। अब आ रही हैं श्रीमती प्रीति मेहता जी, कविता है कुछ लम्हे। आइए प्रीति जी।
मैं प्रीति, मेरा सौभाग्य कि मैं आज फिर इस मंच का एक हिस्सा हूं और आप सबके बीच हूं। अपनी रचना कुछ लम्हे लेकर आई हूं, ऐसे लम्हे जो मेरे, आपके और हर किसी का ख्वाब है। कुछ लम्हे। रिमझिम बरसता सावन, रिमझिम बरसता सावन और वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, रिमझिम बरसता सावन और वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, नर्म ओस की बूंदे, नर्म ओस की बूंदे और वो हवाओं का मचलता संगीत, नर्म ओस की बूंदे और वो हवाओं का मचलता संगीत। कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाब भीगे से, कुछ ख्वाब भीगे से और वो कल्पनाओं की उन्मुक्त उड़ान, कुछ ख्वाब भीगे से और वो कल्पनाओं की उन्मुक्त उड़ान। काली घटा, काली घटा का कैनवास, काली घटा का कैनवास और वो आशाओं के रंगों का साथ, काली घटा का कैनवास और वो आशाओं के रंगों का साथ। वक्त, वक्त तू ठहर जा, मैं जीना चाहती हूँ। वक्त तू ठहर जा, मैं जीना चाहती हूँ। मुमकिन हो, मुमकिन हो तो कुछ लम्हे चुराना चाहती हूँ। वक्त तू ठहर जा, मैं जीना चाहती हूँ। मुमकिन हो तो कुछ लम्हे चुराना चाहती हूँ। धन्यवाद।
एक बूंद प्यार की, एक बूंद ख्याल की, एक बूंद प्यार की, एक बूंद ख्याल की, एक बूंद स्वाति की, सोंधी सोंधी खुशबू यादों की, और दो प्याली चाय की, एक तेरी एक मेरी। कुछ ऐसे ही ख्याल दे गई प्रीति जी कुछ लम्हों में। शुक्रिया प्रीति जी। अब बारी है प्रिया जी की, अद्भुत ख्याल लिए फूलों के मध्य अद्भुत संवाद। आइए प्रिया जी।
रश्मि जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से मैं अपनी रचना लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। अपने परिचय के संदर्भ में चार पंक्तियां लिखी हैं हमने, बस उन्हीं में खोज लीजिए आप मुझको। अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में है मेरा आशियाना, इसी शहर में पली बड़ी पढ़ी लिखी यही है फसाना। खुशियां ढूंढ रही थी मुझे शायद, इसीलिए सौभाग्य को पड़ा मेरा दरवाजा खटखटाना। सोहबत कवियों की मिल गई मुझको, तो लो आ गया मुझे खुद पर इतराना। प्यार दुलार मिलता रहे जीवन पर्यंत, खुद को है इस लायक बनाना। बस इतना ही परिचय है हमारा। आज जो कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है फूलों के मध्य अद्भुत संवाद। बगीचे में अजीब इत्तेफाक हुआ, फूलों के मध्य अद्भुत संवाद हुआ। प्रकृति की विडंबना देखिए, उस अनोखी कथा की मैं साक्षी बनी हूँ। भाग्यशाली हूँ शायद जो बयां करने लायक बनी हूँ। एक फूल ने दूसरे फूल से कहा, जब तितलियाँ इठलाती हुई पंख फड़फड़ाती हुई अपने शूल को चुभोकर रस चूसती हैं, पीड़ा होती है, तराह पड़ता हूँ मैं, पर मैंने तुम्हारी सिसकियों को कभी नहीं सुना। यही चलन है कुल का अपने, ऐसा विचार कर चुप रहा, दर्द सहा, फिर भी मस्त रहा। इस पर दूसरा बोला, बाग को महकाने के लिए, अपनी संतति को बढ़ाने के लिए, चक्षुओं में स्नेह दर्शाने के लिए, सदियों से कुफ्र सहे हैं हमने। अजीब है ना ये बात, मुझको भी भेदा था इसने। आज फूलों की आह का मर्म समझ में आया है।
सच है, ऐसी भी बातें होती हैं, फूलों के बीच बातें होती हैं जिन्हें सुनना और जानना अच्छा लगता है। अब आ रहे हैं श्री गौरव शर्मा जी घर के अलग अलग मायनों के संग। आइए गौरव जी।
मित्रों नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा और मैं आगरा से हूँ। एक बार फिर आप सबके समक्ष आया हूँ। रश्मि जी और हिंद युगम का आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। कदम कदम पर हमें हताश करने वाले बहुत से लोग हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आप सबके सामने एक मतलब और एक शेर रखना चाहूँगा। तो अर्ज है, दुश्मनी में दोस्ती के रंग को तू मिला के देख, दुश्मनी में दोस्ती के रंग को तू मिला के देख, दिल को पीस कर जरा हवा में तो उड़ा के देख, और तुझको मुस्कुराते घर जो कोई देख ना सके, और तुझको मुस्कुराते घर जो कोई देख ना सके, तो देख उसको बार बार मगर तू मुस्कुरा के देख। अब एक गजल पेश करता हूं जिसमें घर के अलग अलग मायने बताए गए हैं। घर एक, बातें अनेक। तो पेश है, गर्द इश्क में जमने का कोई हुनर नहीं होता, गर्द इश्क में जमने का कोई हुनर नहीं होता, सब कहते हैं दीवानों का कभी कोई घर नहीं होता। मैं चुप रहता हूं दंगों में, जहर के घूंट पीता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं चुप रहता हूँ दंगों में, जहर के घूंट पीता हूँ, जो मेरा घर नहीं होता तो मुझको डर नहीं होता। मैं चुप रहता हूँ दंगों में, जहर के घूंट पीता हूँ, जो मेरा घर नहीं होता तो मुझको डर नहीं होता। और यहाँ जो लोग जिम्मेदारियों से डर के जीते हैं, यहाँ जो लोग जिम्मेदारियों से डर के जीते हैं, मकान होते हैं उनके पास मगर कोई घर नहीं होता। यहाँ जो लोग जिम्मेदारियों से डर के जीते हैं, मकान होते हैं उनके पास मगर कोई घर नहीं होता। कभी फुटपाथ पर सोते हुए बच्चों को देखा है? कभी फुटपाथ पर सोते हुए बच्चों को देखा है? वो उनका घर भी होता है, फकत बिस्तर नहीं होता। कभी फुटपाथ पर सोते हुए बच्चों को देखा है? वो उनका घर भी होता है, फकत बिस्तर नहीं होता। बुजुर्ग खानों में रहते हैं यहाँ वालिद अमीरों के, बुजुर्ग खानों में रहते हैं यहाँ वालिद अमीरों के, या अल्लाह क्यों ये पैसा कभी बेघर नहीं होता। बुजुर्ग खानों में रहते हैं यहाँ वालिद अमीरों के, या अल्लाह क्यों ये पैसा कभी बेघर नहीं होता। यहाँ मिट्टी की दीवारों पे हमको नाज होता है, यहाँ मिट्टी की दीवारों पे हमको नाज होता है, जो घर सपनों से बनता है कभी अबतर नहीं होता। यहाँ मिट्टी की दीवारों पे हमको नाज होता है, जो घर सपनों से बनता है कभी अबतर नहीं होता। और मक्ता पेश है, और घर वही खुशहाल माने जाते हैं अक्सर, कि घर वही खुशहाल माने जाते हैं अक्सर, झगड़ा जहाँ एलम्स कभी बाहर नहीं होता। शुक्रिया दोस्तों।
यहाँ जो लोग जिम्मेदारियों से डर के जीते हैं, यहाँ जो लोग जिम्मेदारियों से डर के जीते हैं, मकान होते हैं उनके पास कोई घर नहीं होता। बिल्कुल सही कहा गौरव जी ने। अब सुनते हैं पारुल जी से एक गीत, बरसती सांझ। चलिए उनके संग बूंदों से बातें करें। बहुत अच्छा लगा पारुल जी को सुनना। अब उनके बाद आ रही हैं हमारे बीच दीपाली जी। अब इनका तखल्लुस है, दिल्ली की रहने वाली हैं, साहित्य के प्रति बचपन से ही रुझान रहा, आज अपनी यादों के साथ यहाँ हैं।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है, आप मेरा तखल्लुस है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग करने के उपरांत दिल्ली में ही एक फैशन स्टोर संभालती हूँ। साहित्य के प्रति बचपन से ही रुझान होने के कारण कविता मेरा प्रथम प्रेम बन गई है। मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी में भी साहित्य के प्रति प्रेम जागृत हो, और जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने सीखा है, उसे मैं सबके साथ बाँट सकूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हिंद युग्म और रश्मि जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, अपनी नज़में आप लोगों के साथ बांट सकूं। आज जो नज़्म मैं लेकर आई हूं, उसका शीर्षक है याद। अलमारी के एक कोने में छुपा के रखा था जो कभी मैंने, तेरी याद का वही छोटा सा डिब्बा, कल मुझे देख कर मुस्कुरा दिया, दिल बेबसी से फिर वहीं बह चला, खोल कर देखा तो कुछ ख्वाब मिले, थोड़ी मुलाकातें, चंद नज़में और कुछ गज़लें। एक गज़ल हाथ में उठाई तो फिसल के फर्श पर जा पड़ी, जैसे बरसात में भीगे हों, कुछ इस तरह पैर मेरे भर गए मिसरों से, और फिर आँखों से गज़ल की लय बह चली। इसीलिए छुपा के रखती हूँ तुम्हारी याद के हर मौसम को, कोई भी सफ़ा पलट कर देखो, रूह के ज़ख्म भीग जाते हैं। शुक्रिया।
शुक्रिया दीपाली जी। अंत में आ रहे हैं श्री अक्षय गुप्ता जी। कहते हैं मैं अनुराग मैं प्रयाग, मैं अनुराग मैं प्रयाग, मैं ही सुरों का राग हूँ, नई सुबह का अवतार हूँ। सुनते हैं इनसे कुछ बातें अंतर मन की।
नमस्कार। सबसे पहले मैं हिंदी युग्म और रश्मि प्रभा जी को आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद से इस पावन मंच पर आपके सम्मुख आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए अपनी एक कविता आपके सम्मुख रखता हूं। मैं अक्षय, उम्र 21 साल, वर्तमान में इंदौर में रहते हुए अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कुछ बातें अनकही अंतर मन की। अंतर मन के भावों से हृदय अमुक परिभाषित होगा, अंतर मन के भावों से हृदय अमुक परिभाषित होगा, अग्नि लगाते शब्दों का अर्थ कोई अभिशापित होगा, अग्नि लगाते शब्दों का अर्थ कोई अभिशापित होगा। जीवन मृत्यु की पहेलियां सुख दुख के भ्रम को सुलझाती हैं, जीवन मृत्यु की पहेलियां सुख दुख के भ्रम को सुलझाती हैं, कांटों में जैसे अधखिली कलियां खिल खिल कर मुरझाती हैं, कांटों में जैसे अधखिली कलियां खिल खिल कर मुरझाती हैं। हृदय मेरा निस्पंद हुआ है अटकी सांसें प्राणों में, हृदय मेरा निस्पंद हुआ है अटकी सांसें प्राणों में, क्या है वो सब सत्य गाथाएं, क्या हैं वो सब सत्य गाथाएं जो लिखी गीता पुराणों में, नीर तेरे गंगा जमुना जिसकी हर बूंद पावन है, नीर तेरे गंगा जमुना जिसकी हर बूंद पावन है, प्यासा मन आज भीगा है, प्यासा मन आज भीगा है, नैनों से बरसा सावन है, समय की रेत मुट्ठी से निकले जीवन तुम बढ़ जाने दो, समय की रेत मुट्ठी से निकले जीवन तुम बढ़ जाने दो, दुख के पलचिन जो ठहरे हैं अश्रुओं संग बह जाने दो। अश्रुओं संग बह जाने दो। समय की रेत मुट्ठी से निकले जीवन तुम बढ़ जाने दो। दुख के पलचिन जो ठहरे हैं अश्रुओं संग बह जाने दो, अश्रुओं संग बह जाने दो। धन्यवाद।
समय की रेत मुट्ठी से निकले, समय की रेत मुट्ठी से निकले, जीवन तुम बढ़ जाने दो। दुख के पलचिन जो ठहरे हैं अश्रुओं के संग बह जाने दो। इसके साथ घड़ी की सुइयां कार्यक्रम की समाप्ति की ओर इशारा कर रही हैं, पर उसे नजर बचाकर बता दूं फिर मिलेंगे। कुछ तुम कहना कुछ हम कहेंगे, कुछ तुम कहना कुछ हम कहेंगे, बात से बात निकलेगी। तब तक के लिए इस रचना के साथ आज को समेट लीजिए। तब तक के लिए मेरी इस रचना के साथ आज को समेट लीजिए। बादलों की गर्जना कड़कती बिजली, बादलों की गर्जना कड़कती बिजली, बारिश की तेज बौछारें मंद मंद हवाएं, बारिश की तेज बौछारें मंद मंद हवाएं, हल्की ठंड का आलम है एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए, हल्की ठंड का आलम है एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए। कॉफी और मौसम तो बस बहाना है, कॉफी और मौसम तो बस बहाना है, साथ बैठने का रिश्तों की खोई गर्मी लौटाने का। बादल तो फिर चले जाएंगे, बादल तो फिर चले जाएंगे, बिजलियों की कड़क बारिश की फुहारें थम जाएंगी। मुमकिन है कॉफी ठंडी हो जाए, पर अगर हाथ थाम लो तो जीवन की राहें आसान हो जाएं और कॉफी की खुशबू साथ हो जाए। धन्यवाद।
हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा। क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।